हेलो लिसनर्स, मैं हूं किरण आपके साथ और आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट नीता दवई जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है मैम।
थैंक यू किरण।
और आपको जैसे कि पता है कि लास्ट टाइम हमने लड़कियों का ईव टीजिंग पे एक डिस्कशन किया था, तो आज हम कुछ मुंडे पकड़ के लेके आए हैं और हम पूछेंगे इनसे कि ये ईव टीज क्यों करते हैं।
बिल्कुल सही किरण, और आई मस्ट से दैट आई एम वेरी हैप्पी कि आपके यहाँ पे बॉयज आए हैं और खुद अपने वॉलंटियर करके आए हैं, क्योंकि हम शायद जो क्वेश्चंस पूछेंगे शायद वो कुछ टची क्वेश्चंस भी होंगे,
बट आई एम
वेरी ग्लैड दे आर हियर बिकॉज द पर्पज इज, एक हमारी एफर्ट है रेडियो मानव रचना की टू स्प्रेड दिस इशू, टू टैकल दिस इशू।
और सबसे बड़ी चीज जो है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द टीजिंग, व्हाई बॉयज डू ऑल दिस थिंग्स इन सोसाइटी एंड व्हाई दे टीज गर्ल्स लाइक दिस। सो
माइंडसेट क्या है,
बॉयज परसेप्शन जानना में बहुत जरूरी है, माइंडसेट क्या है, ताकि हम बाकी लड़कियों को अवेयर कर सके और उन्हें कहें कि भैया लड़के ऐसे सोचते हैं, तो आप इस चीज को थोड़ा सा मायने दें।
और शायद हमें ये भी पता चले किरण कि शायद इट्स एंटायरली नॉट देयर फॉल्ट, एंड ये चीज जब तक हम इनके मुंह से नहीं सुनेंगे
तब तक
और इनका परसेप्शन, क्योंकि हम लोग कई बार, और मैंने किरण बड़ा लिटरेचर सर्च भी किया है, पर कभी मुझे एक कोई आर्टिकल ये नहीं बताया, किसी ने ये नहीं बताया कि लड़कों का परसेप्शन क्या है,
क्यों
क्या हम अननेसेसरीली मीडिया और टीचर्स और अथॉरिटीज, क्या हम इनको यूं ही ब्लेम करते हैं कि यहाँ कि इनके
यहां पर
पीछे कोई तथ्य है,
कि
रिएक्शन जो करते हैं क्या उसके पीछे कोई रीजन है, और है तो वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट किरण, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट गेस्ट
जो है हमारे साथ, वो है आतिफ और हमारे साथ है मनीष और समद। इनमें से दो जो है, यानी कि मनीष और समद, ये मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और आतिफ जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे आशा है कि आप अपने सही परसेप्शंस को रखेंगे।
बिल्कुल।
तो स्टार्ट फ्रॉम आतिफ। आतिफ, ये बताओ कि ईव टीजिंग जो है तुम्हारी नजर में तुमने कितनी बार की है?
देखिए मैम, ऐसे जनरली तो हम नहीं, ऐसा करते नहीं है ईव टीजिंग, लेकिन हाँ कभी ग्रुप में होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, और कभी ऐसी मस्ती के मूड में होते हैं, तो कभी कभी कोई लड़की जा रही है सामने से तो कुछ कमेंट के पास कर देते हैं। कुछ हमारे इंटेंशन नहीं होता कि उस लड़की को हमें हर्ट करना या ऐसा कुछ, बस ऐसी मस्ती में हम कुछ कमेंट पास कर देते हैं।
तो क्या आतिफ इज पार्ट ऑफ फन, और क्या ये एक बहुत इन्वॉलंटरी रिएक्शन है कि कोई, तो क्या चीज होती है जो आपको स्टिम्युलेट करती है कमेंट करने के लिए? क्या वो लड़की बहुत खूबसूरत है, या उसने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं, या फिर आज मूड है तो हम कर रहे हैं, तो क्या उनमें, इन चीजों में से क्या ऐसी चीज होती है?
हाँ, लड़कियां भी आजकल बहुत रिवीलिंग आउटफिट्स पहनती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे में ही आपस में चैन लग जाता है कि यार चल इस पे कमेंट करते हैं, या तू कितना अच्छा कमेंट कर सकता है, या मैं कितना अच्छा कमेंट कर सकता हूं।
हम लोगों ने लड़कियों के डिस्कशन में बात डिस्कस की थी कि इनके बीच में कंपटीशन लगता है शायद कि कौन कितना बेटर कमेंट कर पाएगा, और आपको कितना रिस्पांस लड़की की तरफ से मिल पाएगा।
मुझे ये भी लगता है कि लड़कियां भी अटेंशन सीकर्स होती हैं, वो भी चाहती हैं कि लड़के कमेंट करें हमारे ऊपर।
मैम मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा कि मैम देखिए, मैम ये होता है कि ये डिपेंड करता है कि जो लड़का कमेंट कर रहा है वो, कि वो कैसा, उसका क्राउड कैसा है, क्योंकि मैम जनरली हम देखते हैं कि जो जो लड़का, जिसके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में लड़कियां भी हैं, और जो एक, हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक लड़का रहते हैं जिसके फ्रेंड सर्कल में लड़कियां भी हैं, और दूसरा जो लड़का है उसके फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं, वो लड़के लड़कों का ही
फ्रेंड सर्कल है। हाँ,
तो उसमें क्या होता है, जो लड़कियों वाले फ्रेंड सर्कल में जो बंदा है वो समझता है, वो जानता है कि वो लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करता है, बात करता है, उनको रिस्पेक्ट करता है, और रिस्पेक्ट उसे मिलता भी है लड़कियों की तरफ से, तो ये समझता है कि अगर मैं किसी और लड़की को करूँ तो शायद मेरे भी जो फ्रेंड्स में लड़कियां हैं उनको भी कोई कर सकता है, ये फीलिंग हो सकती है। बट वो जो दूसरे जो लड़का है, वो जो जिनके पास
सिर्फ
बॉयफ्रेंड सर्कल में है, वो ये सोचता है कि अरे यार हमारे पास तो कोई है नहीं सर्कल, मतलब कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या दिक्कत है, हम टीज कर लेते हैं, मतलब कुछ भी कैसे कमेंट पास करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि जो लड़के ऑलरेडी गर्लफ्रेंड सर्कल में हैं, उन लोगों को जरूरत ही महसूस नहीं होती कि हम किसी को ईव टीज कर रहे हैं।
तो क्या हम ये सोच समझ सकते हैं कि ईव टीजिंग राइजेज आउट ऑफ अ नीड, एक जरूरत है, एक कुछ हद तक एक फ्रस्ट्रेशन है? व्हाट डू यू थिंक मनीष?
मैम ये नीड नहीं है मैम, बट फ्रस्ट्रेशन आई थिंक, या फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल है, क्योंकि अब जब वो क्राउड में वो उनके साथ रहते हैं, अब सारे बॉयज ही बॉयज हैं, क्योंकि जो लड़के सारे एक साथ रहते हैं उनमें बातें होती रहती है कि हाँ भाई इस बारे में किसी, मतलब अलग अलग, मतलब किसी से रिलेटेड, हाँ मतलब कि हाँ भाई कैसी होती हैं, कैसी बातें करती होंगी लड़कियां, या फिर कैसा होता होगा, तो उनका जो माइंड सेट होता है कि हम, मतलब अलग अलग चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, पॉन्ड्स वगैरह जो भी साइट्स होते हैं वो सब देख के, तो उनका ये होता है कि हाँ भाई अगर मैं इनको छेड़ूंगा, मैं इसको ये कहूंगा वो कहूंगा, तो शायद वो मेरी बातों में इन्वॉल्व होगी या फिर जो भी उन्हें चाहिए।
तो ये मतलब कि लड़के भी अटेंशन सीख कर रहे हैं ईव टीज करके कि उस लड़की का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित कर रहे हैं।
मैं यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए उनका ये होता है कि कहीं अगर मैं कमेंट मारूं वो लड़की मेरे को देखती है हंसती है तो हाँ वो फंस रही है वो लड़की, ये थिंकिंग होती है। तो अगर मतलब वो अगर वो हो जाता है कि हाँ वो फंस रही है तो ठीक है, हाँ वो मैंने टेंशन ले लिया, तो वो फिर ये सोचने लगता है हाँ वो इस टाइप की लड़की है, इस टाइप की लड़की है। तो ये जो थिंकिंग होती है वो बेसिकली आई मीन ये सोच के वो टीज करने की सोचते हैं जितना मैं सोचता हूँ।
तो समद क्या आप मनीष के व्यूज से सहमत हैं?
मनीष के व्यूज से तो मैं ज्यादा सहमत नहीं हूँ। जो लड़की की मेंटालिटी ये होती है कि लड़कियां अगर जा रही हैं तो उन्हें टीज करके उन्हें छेड़ के उन्हें एक अंदर से एक अजीब सा मजा आता है कि मैंने आज उस लड़की को छेड़ दिया। कभी कभी क्या होता है कि हम दिन भर फर्स्ट मतलब बहुत सारे काम करते हैं और शाम में जब घर जाते हैं तो मेरा मन करता है कि उस लड़की को छेड़े। अगर लड़की अकेले जा रही है तो उसे हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, अगर लड़की कपल में जा रही है तो उसे हम छेड़ते हैं। ये लड़कों की अलग सी मेंटालिटी होती है उनकी अलग, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं अकेले लड़की को वो कभी नहीं छेड़ते, वो कमेंट करते हैं लेकिन छेड़ते नहीं है। हमें छेड़ना कि उन्हें उनके बदन को छूना या उनके पास जाना या
उनको
फॉलो करना, ये हम अकेले लड़की को नहीं करते। जब हम दो होते हैं तो हम उस लड़की के पास जाते हैं, उससे उसको टीज करते हैं या उसे छेड़ते हैं। तो
ये जो तुम बात कह रहे हो समद कि हम एक सिंगल लड़की को इग्नोर करते हैं, ज्यादा उसको नहीं वो करते, और जो ड्यूएल जा रही है या फिर कंपनी बना के जा रही है या ग्रुप में जा रही है, तो इसके पीछे रीजन क्या है?
इसके पीछे रीजन जैसे मनीष ने कहा कि हम लड़की अटेंशन सीकर।
अच्छा, तो मतलब एक लड़की नहीं देगी तो दूसरी तो देगी।
बिल्कुल, जाहिर सी बात। और हम लड़के भी अटेंशन सीकर होते हैं,
यानी कि एक तीर से चार पांच निशाने मारते हैं।
तो मतलब कि मेनली इट मींस दैट अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी है ये। और जैसे समद ने कहा कि आप एक बहुत पूरा दिन काम करके जा रहे हैं तो आपने कमेंट मार दिया, तो एक थोड़ा सा ये रिक्रिएशन भी हो गया, थोड़ा सा मजा भी हो गया, एंटरटेनमेंट भी हो गया। तो हम आप एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं, अटेंशन सीकिंग के लिए भी करते हैं, और एक कहीं पे एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है, इसलिए भी निकालती है। तो इसका मतलब कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स बॉयज के हो गए, पर ऐसी क्या चीज एक लड़की में होती है कि आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमें तो कमेंट करना पड़ा कि वो लड़की ऐसी थी या वैसी थी? जैसे
मतलब आप क्या क्वालिटीज देखते हैं?
कमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर कोई खूबसूरत लड़की जा रही है तो उसे हम कमेंट नहीं करते, उसे हम या तो हाई सेक्सी कह देते हैं, हाई कट्टो कह देते हैं, इनकेस मतलब अलग डिपेंड करता है वो कि हम कमेंट कैसे करते हैं। और अगर कोई सेक्सी लड़की मतलब रिवीलिंग आउटफिट्स कम कपड़े पहनते हो तो उन पे हम ज्यादा अटेंशन मतलब देते हैं, क्योंकि वो कम कपड़े पहनती है और हमारे माइंड जो माइंडसेट होता है उस लड़की का वो अजीब सा आता है, आई मीन थोड़ा वल्गर माइंड सोच आती है उस लड़की को देख के। तो डिपेंड करता है कि लड़कियां जा कैसे रही है।
अच्छा, मतलब यहाँ पर ये है कि हमें ईव टीज तो करना ही है, इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि वो लड़की ज्यादा खूबसूरत है या कम खूबसूरत है।
और अगर एक सीधी सादी लड़की जा रही हो सलवार कुर्ते पहने हुए तो क्या आप क्या उस पे ज्यादा कमेंट्स मारते हैं?
ये मैं कहना चाहूंगा कि ये डिपेंड करता है कि अगर देखो कोई लड़की जा रही है सीधी सादी, अब ये जो लड़के खड़े हैं या फिर जो भी है और अपने कुछ काम पे एंगेज है तो मैं नहीं समझता कि वो नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो जा रहे हैं पता भी नहीं चलेगा कि वो जा रही है, अगर देख भी लिया तो वो अपने काम पे बिजी रहेंगे। बट ये है कि हाँ वो बैठे हैं बस बातें कर रहे हैं और ऐसी, क्योंकि लड़कों में इन जनरल होता है कि बातें करते करते कुछ नॉटी नॉटी बातें भी करते हैं और ऐसे करने लग जाते हैं, तो उसके सामने से कोई लड़की जा रही है तो किसी ने एक ने बोले बोले एक लड़की जा रही है तो दूसरा बोल देगा कमेंट पास करते हैं, तो किसी ने कमेंट पास किया, तो ये चीज होता है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि उस लड़की ने सलवार पहना हो, सूट पहना हो, साड़ी पहना हो या फिर मिनी स्कर्ट पहना हो।
देखो, एक चीज और भी है कि देखिए ज्यादातर देखा जाता है कि कैंटीन्स के बाहर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, ईटरी जॉइंट्स के पास लड़के हमेशा एक ग्रुप बना के खड़े रहते हैं, झुंड में रहते हैं कि सोच के जाते हैं कि आज हम वहाँ चलते हैं।
आपने एक बात इससे पहले कही थी कि कोई लड़की अगर सलवार कमीज पहन के जा रही है तो उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, तो ये जनरली लड़कों में होता है। ये बात सही है बिल्कुल कि एक लड़की अगर सलवार कमीज पहन के जा रही है उसको लड़के देख लेंगे, उसको बोल देंगे कि बहुत खूबसूरत है या फिर कुछ जो भी कमेंट करे वो कर देंगे, लेकिन वो जनरली क्या होता है कि वो लड़की पलट के कमेंट नहीं करेगी, बहस नहीं करेगी। जनरली अब सीधी सादी सी है तो कभी बहस नहीं करेगी। हाँ, लेकिन कोई लड़की जीन्स टाइट आउटफिट्स में जा रही है उस पर कमेंट करते हैं तो वो लड़की बहस कर सकते हैं या रिटर्न में कमेंट करेगी, तो उसको जानबूझ के लड़की छेड़ते हैं।
मैम दूसरा
ये जनरल फीलिंग है।
एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कि हम दो लड़कियों को लेते हैं, एक ने सलवार पहन के जा रही है, सूट जो भी पहन के जा रही है, और दूसरा मिनी स्कर्ट टाइप का कुछ कपड़ा पहन के जा रही है, आई मीन आउटफिट जिसका बहुत टाइट वैसा पहन के, तो लड़के मेजोरिटी कह रहा हूँ मैं शायद उस लड़की पे कमेंट ना करें जिसने सूट पहन लिया, और दूसरी लड़की पे कमेंट जरूर करेंगे क्योंकि वो ये सोचेंगे ये लड़की ऐसी ही है।
इनकी बातों से समझ में आ रहा है नीता मैम वो ये कि ये लोग उसी लड़की को छेड़ते हैं जिससे इनको रिएक्शन मिल सके। लड़की अगर बहुत सुंदर है लेकिन इन्हें लग रहा है कि सीधी सादी है तो मे बी उस पर इतना कमेंट ना मारे, और लड़की कम खूबसूरत है लेकिन इन्हें लगता है कि वो बहुत हाई फाई है या फिर उनसे उनको रिस्पॉन्स मिलेगा
तो मतलब कि अगर आप ऐसे
अगेन अटेंशन सीकिंग वाली बात,
बट दैट मींस कि लेट अस से किरण, दैट मींस शी डिजर्व्स इट. क्या आप ये सोचते हैं कि इस तरह से रिवीलिंग आउटफिट पहन के जाती है, सो डज शी डिजर्व दैट कमेंट?
एक बात मैं कहना चाहूंगा मैम, अगर देखो अगर एक पार्टी में जा रही है, वो पब में जा रही है, जहाँ पे सारे सबने एक जैसा आउटफिट पहना है, जींस पहना, टॉप पहना है, ठीक है, इट्स फाइन, सबने क्योंकि एक ही जैसा, क्योंकि जहाँ जाना पड़ता है जैसे कि जैसा देश वैसा भेष होता है. मैम जहाँ गई है वहाँ पे ठीक है सबने ऐसा पहना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट स्ट्रीट से वो जा रही है, इवनिंग का टाइम है, और ऐसे कपड़े पहन के स्ट्रीट से कोई लड़की जा रही है, तो मैं तो ये सोचता हूँ उसके घर वालों ने अलाउ नहीं किया होगा उसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए, पहली बात तो उनके अगेंस्ट जाके वो पहन के जा रही हो, या तो मॉम डैड नहीं होंगे जहाँ पे वो रहती है. तो उस वैसी लड़की को अगर कोई लड़का कमेंट पास करे, तो मैं तो सोचता हूँ ये गलत नहीं किया उसने.
एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी मनीष तुम्हें, कि अगर कोई लड़की अपने अकॉर्डिंग जीना चाह रही है, अगर कोई लड़की अपने अकॉर्डिंग अपने आप को स्मार्ट लुक देना चाह रही है, तो क्या वो इस चीज की हकदार हो जाती है कि लड़की उसको ईपीस करे या फिर उसके साथ कुछ दुर्घटना हो?
स्मार्ट लुक की बात देना तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उस पे सूट करता
है. मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या लड़के समाज के ठेकेदार होते हैं लड़कियों के ड्रेस कोड डिसाइड करने के लिए?
बिल्कुल किरण, नहीं आई वी जस्ट वांट टू आस्क, जो किरण का मतलब है कि क्या आप हम इस तरह से लें कि मनीष कल को आपका मन करे कि मैं एक बड़ा स्मार्ट सी फिटेड टी शर्ट पहनूं, या मैं एक बहुत अच्छा स्मार्ट सा जैकेट
पहनूं, जींस पहनूं, कट हो वहां कट हो, और आप बाहर निकल जाते हैं, आपका मन है इस तरह की चीज पहनने का जिसमें कि आपको लगता है कि आई लुक स्मार्ट,
तो क्या आपकी गलत गलती है?
तो क्या ये आपकी गलती है, यानी कि आप इस चीज के हकदार हो जाते हैं?
मेजॉरिटी ईव टीसिंग में लड़कियां विक्टिम बनती हैं, लड़के बहुत बनते ही नहीं है, जनरली होते ही नहीं लड़के विक्टिम. तो मैम ये कहता हूँ कि उनको तो अपने आप, एक मिनट मैम, अगर रात का वक्त है, रात का शाम का टाइम, उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ शाम के वक्त मैं ऐसे कपड़े पहन के ऐसी गलियों से जाऊंगी तो कोई लड़का मुझे कुछ कर सकता है, तो ये उनके दिमाग में होना चाहिए. बेशक उन्होंने अंदर पहना कुछ ऐसा और ऊपर से
पूछना चाहती हूँ कि ऐसा डर क्यों है उनके अंदर?
डर इसलिए क्योंकि समाज हमारा जो
तो समाज कौन है वो जो उनको ऐसा डर बैठा के रखता है?
क्या
वो समाज के कौन से लोग है जिसने ऐसा डर बैठा?
पहले बताना, देखो एक बात तो ये क्लियर है कि जो ऑपोजिट सेक्टर वो अट्रैक्ट करता है लड़कों को.
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैंने.
बात तो अगर मेरी, मैं अभी रोड से जा रहा हूँ, किसी लड़की ने वैसे कपड़े पहने, मेरी अपनी गर्लफ्रेंड मेरे साथ हो या मेरी मॉम हो या मेरी सिस्टर हो, तो मैं कभी नहीं कहूंगा.
बिल्कुल बिल्कुल.
मैं अगर सीरियसली, अगर मेरा मन वैसा लगता भी नहीं उस बातों पे, मगर मैं पैदल जा रहा हूँ वहाँ से और मैं देखूं वो लड़की ऐसे कपड़े पहनूं, मैं एक बार देखने की कोशिश करूंगा ये है कौन लड़की.
बिल्कुल
सूट पहना तो मैं नहीं देखूंगा, जा रही है वो लड़की कोई.
देखिए किरण, एक्चुअली वो
जानने का
वो
मतलब यही है कि
वो हम जो आ रहे हैं ना, कि ये हमारी सोसाइटी है,
सोसाइटी तो ने कल्चर बाउंड कर दिया है ना लड़कियों की तरफ, जो रिस्ट्रिक्शन है उसको बांध दिया ना, कि आप इसके बाहर कदम रखोगे तो हम तुम्हें टीज करेंगे, हम तुम्हारे साथ रेप करेंगे, हम तुम्हें एसिड फेंकेंगे, हम तुम्हें क्या नाम है, तुम्हारे गोली मारेंगे, तुम्हें चक्कू मारेंगे. तो यानी कि वो एक सर्कल बना दिया, दायरा फिक्स कर
हमारे उसमें है.
एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए जीन्स पहनना और मिनी स्कर्ट पहनने में बहुत फर्क है.
बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आई एग्री विद
यू. आई एग्री, एक लड़की जा रही है तो शी इज नॉट एक्सपोजिंग हर बॉडी, बट वो मतलब ठीक है जीन्स पहन के जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी पूरी बॉडी ढकी हुई है, बट वो मिनी स्कर्ट पहन के जा रही है तो उसके आधे लेग्स पूरे दिखते हैं. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस लड़की को जो मतलब जिसके आधे पैर दिख रहे हैं, मतलब जो भी बॉडी के कोई पार्ट्स दिख रहे हैं, तो लड़का इंटेंशनली नहीं, वो कर जाएगा क्योंकि वो ये नेचर का एक रूल है,
सी किरण, इट्स अ नेचर, इट्स अ, एक जो चीज है सोसाइटी है हमारी, एक ये मेल नेचर होता है. लड़के के, लड़कों के भी तो लेग्स दिखते हैं, लड़कियां तो कमेंट नहीं करती हैं उन पे, लड़के भी शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं और एक्सपोज करते हैं, पर लड़कियां नहीं करती हैं. तो ये एक मेल और फीमेल में जो, जैसे मनीष ने कहा, एक अट्रैक्शन है और एक ये एक नेचर ने हमें ऐसा बनाया है, तो कहीं ना कहीं
बायोलॉजिकल
डिफरेंस
है ये. बिल्कुल,
पर ये भी है मनीष, और मैं आतिफ से और समझ से ये पूछना चाहूंगी कि यही सिचुएशन बाहर के देशों में अगर आप जाते हैं तो हम नहीं कमेंट करते हैं वहाँ पे हमारे स्टूडेंट ग्रुप्स जाते हैं तो दे आर टोल्ड कि भाई प्लीज डोंट कमेंट, और उनका वो शायद सोचते भी नहीं है कमेंट करना, क्योंकि वहाँ पे एक नेचुरल
है वो. और अगर हम वहाँ पे, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे, कि अगर हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे ईटीजिंग जैसा जो वर्ड है वो इतना पॉपुलर भी नहीं है.
हाँ, इंडिया और पाकिस्तान में वहाँ पे अपब्रिंगिंग में ये चीज नहीं आती है.
अपब्रिंगिंग में आती ही
नहीं है. बहुत अच्छा सवाल मनीष, एक मिनट, बहुत अच्छा, अच्छी चीज एक आतिफ ने कही है. मैं ये आतिफ से पूछना चाहूंगी कि अपब्रिंगिंग का मतलब आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो अपब्रिंगिंग में, क्या हमारी अपब्रिंगिंग गलत है, क्या उनकी अपब्रिंगिंग सही है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, हमारे में क्या अपब्रिंगिंग में डिफरेंस है कि हम ऐसा करते हैं?
डिफरेंस है मैम, एक्चुअली क्या होता है कि वो मतलब बाहर फॉरेन कंट्रीज में अपने बच्चों को खुला छोड़ देते हैं उस तरह से, मतलब वो अपने बच्चों के बच्चों से डिस्कस करते हैं हर चीज़। हमारे यहाँ पे हमारे पेरेंट्स नहीं करते, थोड़ा सा गैप होता है जैसे सेक्स के ऊपर बात हम नहीं कर सकते उनसे, तो इस तरह का वो अपब्रिंगिंग में आ जाती है वो बात कि उतना फ्रैंक नहीं होते हमारे मम्मी से डैडी से। तो
बहुत ही अच्छा पॉइंट आतिफ ने बोला है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट यू नो आतिफ ने एक बहुत अच्छी सी बात उभर के आई है कि ये चीज जो हम अपने पेरेंट्स जो हैं जो हम अपने डिस्कस नहीं करते, तो ये एक हम लोग सोचते हैं कि शायद एक सोल्यूशन ये भी है कि हम इन बातों को फ्रीली डिस्कस करें। क्या एक सोल्यूशन ये हो सकता है?
इवन मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हम पेरेंट्स की भी बात अगर अलग कर दें, लड़के और लड़की को भी देखें, घर में भाई बहन है, इवन उनके बीच में इतना हम लोग बाउंडेशन बना देते हैं कि बहन भाई है तो अब चलो तुम बड़े हो गए हो, नहीं तुम घर में शॉर्ट्स नहीं पहनोगी, तुम्हारा भाई बड़ा है, तुम भी धीरे धीरे बड़ी हो रही हो, ठीक है तुम अपने बॉयफ्रेंड्स को या फिर अपने कॉलेज फ्रेंड्स को तुम घर पे नहीं ला सकती हो, अगर तुम लेट हो रही हो, अगर तुम लेट हो रही हो तो तुम भाई को ही बुलाओगी, चाहे तुम वहां पर स्टैंड पे खड़े खड़े तुम्हें 11 बज जाए लेकिन तुम 10 बजे अपने दोस्त के साथ घर पे नहीं आओगी।
तो कहीं ना कहीं हमारे आप लोग को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपके पेरेंट्स ज्यादा फ्री हो आपसे ये बातें ओपनली डिस्कस करें, बताएं एक दूसरे को कि ये चेंजेस क्या हैं, क्या अगर हम स्कूल्स में ये बातें करें, सेक्स एजुकेशन पे बातें करें और हम एक लड़का समझे कि लड़कियों के जहन में उनके फिजिकल इमोशनल मेंटल चेंजेस क्या होते हैं और एक लड़की समझे, तो शायद ये चीजें Can this be a solution? That is what I want to ask.
जब हम पैदा होते हैं अपने घर में तो हमारे माँ बाप जो हमें पालते हैं तो वो मतलब they confined themselves thinking as a typical orthodox कि ये लड़की है उससे आप दोस्ती नहीं कर सकते हो, उससे आप छू नहीं सकते हो। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज में जैसे अमेरिका यूरोप में ले लें आप, वहाँ जो बच्चे पैदे होते हैं जो वो बड़े होते हैं बच्चे, तो उनके घर वाले उन्हें मतलब एक खुला तो नहीं छोड़ते लेकिन हाँ उन्हें ये सब चीज़ें सिखाते हैं कि सेक्स एजुकेशन क्या होती है, सेक्स क्या होती है और लोगों से बिहेव कैसे करते हैं अपने दोस्तों के साथ। लेकिन यहाँ हम इंडिया में ये सब हम नहीं करते।
बेसिकली क्या होता है बात जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है जब हम दूसरे देश की बात करते हैं, वहाँ पे लड़की लड़की के बीच में क्यूरियोसिटी जो है वो खत्म है हमारे यहाँ पे ज्यादा।
वो इसलिए ऐसा है कि यूरोप में अगर बात कर रहे हैं हम यूरोप में, तो वहाँ पे मतलब फादर का नाम पूछते ही नहीं है, वहाँ पे मदर का नाम पूछते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता कौन किसकी बेटी है। वहाँ पे 3-4 शादी करते हैं, डिवोर्स किया, ये वो पता ही नहीं होता।
कुछ वो उनकी कल्चरल नेगेटिव पॉइंट है।
अगर हम इंडिया में आते तो हम ये कहते हैं कि इसकी हमारी इंडियन संस्कृति हमारी मतलब ये चीज अलाउ नहीं करती है, लेकिन हमारी इंडियन संस्कृति ये भी तो नहीं कहती ना कि आप बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में ना बताओ।
बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया पॉइंट है। किरण, दीज बॉयज आर मच मोर इंटेलिजेंट एंड आई थिंक हम कोई शायद इन चीजों का सोल्यूशन इनसे ही मिल जाएगा।
बिल्कुल मिल जाएगा।
कहना चाहूंगा मैम, जैसे कि जैसे हम टीवी चलाते हैं, कोई भी सोशल अवेयरनेस कोई भी एड आता है जैसे कि एड्स के ऊपर आता है, मतलब जिसमें बताते हैं कौन क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या फिर कॉन्डम्स के बारे में बताते हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताते हैं, तो फैमिली हटा देती है, मतलब जो भी फैमिली में बैठे तो मम्मी पापा हटा देता है कि बच्चा ना देखे, देखने ना देंगे तो कैसे अवेयर बच्चे।
कभी क्या होता है कि अगर हम बच्चों को जितना ढक के रखेंगे, जितना मतलब उन्हें सिक्योरिटी देंगे, वो उतना उस बाउंडेशन से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। आजकल एपिटिज्म जो होती है वो वही होती है, कुछ बच्चों को घर पे बंद के रख दिया जाता है कि आप बाहर नहीं जाओगे, ये छोटे बच्चों का तुम निकलो, ये गंदे बच्चे हैं, तो उन पे ये ज्यादा अफेक्ट करता है जब वो घर से बाहर निकलते हैं, जब वो खुला
क्यूरियोसिटी आ जाती है कि वो मना क्यों किया आखिर, ये है क्या, ये करके देख।
कभी कभी क्या होता है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ बॉयज स्कूल में कोविड में नहीं डालते, कोविड में नहीं डालने का ये घाटा ये होता है कि जब वो स्कूल से बाहर निकलता है, जब कॉलेज में आता है, जब वो दुनिया देखता है कि नहीं लड़की और लड़के लड़की और लड़कियां दोनों एक साथ हैं, तो वो मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो ये सब हरकतें करते हैं। मतलब ये तो उनकी मेंटेलिटी होती है कि उन्हें तो ये समझ होती है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन जो योगदान है वो पेरेंट्स ही देते हैं उन्हें।
तो कहीं ना कहीं हमारी हमारा कल्चर है, हमारा अपब्रिंगिंग है, उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार लाने की जरूरत है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछना चाहती हूँ कि सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप क्या मानते हैं कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ईव टीजिंग के लिए, गर्ल्स
या बॉयज ज्यादा?
मेरे हिसाब से तो लड़के ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बनिस्बत के गर्ल्स के, क्योंकि लड़के ये भी जानते हैं कि सही है क्या गलत क्या सही, वो ये भी जानते हैं, लेकिन ये सब जानने के बावजूद वो ये सब हरकत करते हैं, तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लड़की भी होगी ना कि वो ये क्यों
करता है। बिल्कुल,
मैं कहना चाहूंगा जैसे कि हमारा समाज है जहाँ पे शुरुआत में लड़कियों को थोड़ा पीछे पीछे रखा गया, बट अब जाके हमारे लड़कियों को आगे 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 लाया गया है, उनके लिए बहुत सारे सुविधाएं दिया गया और नए मतलब अच्छा कोटा वगैरह दे रखा है, मतलब हमें हमने आगे आगे
लड़कियां आजकल बहुत आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं,
मतलब हम जो लड़कों को है जितने भी लड़के हैं उन्हें पता है कि हमारी वजह से ये हो सकता है, हमारी वजह से कुछ गलत हो सकता है इनके साथ, मतलब अगर हमने कुछ किया तो आगे जाके इनके मतलब शादी में या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है ये समझ हमें है, पर उसके बावजूद भी जाके लड़के अगर ऐसी हरकतें करते तो इट्स बैड। बट ये भी सोचना चाहिए कि लड़कियों को किस तरह और किस कहाँ पे किस तरह रहना चाहिए, मतलब वही बात होती है जैसा देश वैसा भेष, ये सोच के उन्हें करना चाहिए अपनी।
तो मनीष का ये कहना है कि लड़के गलत जरूर हैं पर लड़कियों को सावधान रहना जरूरी है, है ना, क्योंकि आप सब लड़कों को नहीं चेंज कर सकते, हम शायद इन तीनों को तो चेंज कर ही देंगे और इनके फ्रेंड्स को भी पर ये बहुत बहुत सही कहा आपने मनीष। अच्छा, अच्छा
एक एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि वर्क प्लेस और वर्क एनवायरनमेंट में जब हम ऑफिस की बात करते हैं वहाँ पे भी लड़कियों के साथ ईव टीजिंग जैसी हरकतें होती रहती हैं, उसका रीजन क्या मेल ईगो भी कहीं पे आता है? एक तो हो गया कि हमने किसी को पसंद करते हैं या फिर कोई हमें स्मार्ट लग रही है, कोई हमें बहुत सेक्सी लग रही है, लेकिन एक बात मेल ईगो की भी है, अगर मान लो कोई लड़की तुमसे आगे जा रही है,
चाहते हैं कि मतलब हमारे ग्रुप में है ना तो सुपीरियर मैं हूँ, तो उसके लिए वो कमेंट पास करते हैं कि देख तुझसे अच्छा कमेंट मैंने पास किया, मुझसे ज्यादा ज्यादा बात करती है, तुझसे तो करती है लेकिन मुझसे ज्यादा बात करती है, तो वर्क प्लेस स्मार्ट है
वर्क प्लेस में अपनी इमेज प्रोजेक्ट करने के चक्कर में।
एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक बार क्लास में ऐसे डिबेट चल रहा था तो इसी बात से कि लड़कियों को आजकल वो दिया गया है कोटा दिया गया, मतलब तो मैम ये बताना जैसे आपने कहा कि वहाँ पे ईगो वाली बात आती है, तो मैम वहाँ पे लड़का ये सोचता है कि यार इनको इतनी सारी सुविधाएं दे रखी है और इसके बाद ये हमसे आगे हैं, जैसे कि कोई भी हायर पोस्ट में हो जैसे मैनेजर उसके नीचे आ रहा हो तो सोचते हैं इनको इतना वो भी दे रखी सुविधा और ये हमारी जगह पे भी बैठी है, तो ये रीजन। अब जैसे कि बसेस में सीट्स लेडीज के लिए सीट्स दे रखी है, महिलाएं के लिए अलग सी सीट्स होती है, तो मैम ये प्रॉब्लम होती है कि लड़कों को खड़ा होना पड़ता है, मगर अगर गवर्नमेंट लेडीज के लिए अलग सा बस ही निकाल दे, अगर इतनी ही वो प्रॉब्लम है लेडीज के लिए अलग सा बस निकाल दे तो ये नहीं आती, तो यही बच्चे आपस में यही बोल रहे थे कि हाँ उनके लिए लेडीज सीट्स क्यों है
कि बस नहीं, इसका कहना बिल्कुल सही है कि मनीष कह रहा है कि एक तरफ तो हम उनको ऊपर कर रहे हैं और एक तरफ हम उनको अलग भी कर रहे हैं, तो हम या तो उनमें इक्वालिटी लाना चाहते हैं या हम उनमें डिफरेंस देना रहना देना चाहते हैं। तो देखो मनीष, हमारा आई थिंक अथॉरिटीज का गवर्नमेंट का यही मकसद है कि भाई गिव देम द ऑप्शंस, गिव देम अपॉर्चुनिटीज, सेफ अपॉर्चुनिटीज टू कम फॉरवर्ड एंड उनकी सेफ्टी के लिए भी हम ध्यान रखें, क्योंकि शायद मनीष बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लिसनर्स भी हमारे जो शायद ऐसा नहीं सोचते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं लड़कियां 100% रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको कैसे सेफ रखा जाए।
हमारी सोसाइटी है, किसी भी सोसाइटी को चेंज करने में जनरेशंस लग जाती हैं।
देखिए मैम,
एक जनरेशन में कोई भी सोसाइटी चेंज नहीं होती है, तो अगर गवर्नमेंट में इन्हें रूल निकालना है तो वो रूल ये देख के निकालेगी ना कि हमारी मेजोरिटी पीपल कैसी है, वो एकदम से ये तो नहीं कहेगी कि अगर हम 33% अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो तुरंत इक्वालिटी आ जाएगी और तुरंत सारे लोग चेंज हो जाएंगे और तुरंत ही उन लोगों को ये समझ में आ जाएगी कि औरत औरत है, टॉय नहीं।
मनीष का कहना है कि फ्रस्ट्रेशंस इसलिए भी होती हैं कि क्योंकि लड़कों को लगता है कि गर्ल्स आर प्रिविलेज्ड एंड दे आर सिटिंग इन ऑन अस पोजीशन मोर देन अस। ओके, नाउ इस ये तो बातें किरण बहुत होती रहेंगी, पर एक चीज मैं इनसे एक बहुत अहम सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को पता है कि ईव टीजिंग जैसी, जैसे आप लोगों ने कहा कि कोई लोग ऐसी रिक्रिएशन के लिए करते हैं, कोई अपना ईगो के लिए करता है, कोई अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए करता है, क्या आप लोग को पता है कि देर आर लॉज अगेंस्ट ईव टीजिंग एंड आप अरेस्ट भी हो सकते हैं? तो अगर आपने जिस लड़की को सीधा समझ के या जो भी समझ के किया वो शी कैन टर्न अराउंड एंड कंप्लेन अगेंस्ट है ना, और
शी कैन
लॉज अ कंप्लेन, तो क्या ये जानते हुए भी क्या लोग इस चीज से कतराते नहीं है, डरते नहीं है?
देखिए मैम, ये सोचते होंगे कि लड़की बदनाम हो जाएगी।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, यही होता
है। अगेन हमारे सोसाइटी सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर आते हैं कि लड़कों को ये पता है कि हमारी सोसाइटी में लड़कों को लड़कियों को दबा दिया जाएगा, उनके पेरेंट्स बोलेंगे नहीं लड़की तुम चुप हो जाओ, मत बोलना, किसी को नहीं कहना। इवन पुलिस आल्सो विल से द सेम।
ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो ईव टीजिंग की बात है ये सिर्फ लड़के पे डिपेंड नहीं करती, मैंने खुद ये देखा है कि एक 40-45-50 साल का इंसान भी ईव टीजिंग करता है।
बिल्कुल, वेरी गुड।
ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये सिर्फ यंग एज या यूथ ही ईव टीजिंग करता है।
अक्सर बसेस में भी मैंने देखा है कि लड़कियां जो होती हैं वो खड़ी हैं और जो उनके अंकल के एज के होते हैं या फिर उनके दादा के एज के होते हैं 50-65 वो उन्हें घूरते रहते हैं, उन पे कमेंट देके चले जाते हैं, या फिर अगर वो उनके पास वाली सीट पे बैठी हैं तो उन्हें छेड़ते रहते हैं, हाथ से टच करते रहते हैं अलग अलग।
तो इसका मतलब किरण की ये फ्रस्ट्रेशन जो होती है ये ता जिंदगी चलती है,
जिंदगी ही चलती है शायद।
मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनके घर से उजागर होती है, उनके घर से निकलती है। ऐसा क्या होता है कि वो जो इंसान ईव टीजिंग करता है वो अपनी बीवी से या अपने बच्चों से खुश नहीं होता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी पे कमेंट करता है या किसी पे कमेंट पास कर दिया, उसे किसी छेड़ता है।
यही फ्रस्ट्रेशन जब एक और रूप लेता है तो वो बहुत भयानक रूप भी हो जाता है, रेप में कन्वर्ट हो जाता है, मोलेस्टेशन में, सेक्सुअल हैरेसमेंट में, और कभी कभी मर्डर्स,
बहुत सारी दुखद घटनाएं होती हैं जो लड़कियों के साथ हो जाती हैं।
फाइनली किरण, एक हम इनसे एक आखिर एक इम्पॉर्टेंट सवाल और मैं करना चाहती हूँ कि क्या आप लोग सोचते हैं कि मीडिया, मूवीज, टेलीविजन शोज, क्या ये एनकरेज करते हैं ईव टीजिंग को? क्या ये मूवीज ये आइडलाइज करते हैं, जैसे कि पुरानी मूवीज में होता था कि जो हीरो है वो लड़की पे कमेंट मार रहा है, उसके पीछे पीछे गाना गा रहा है और वो लड़की गुस्सा होकर चली जा रही है, पर अल्टीमेटली शी इज अ हीरोइन, शी टर्न्स अराउंड एंड दे बिकम अ कपल। सो क्या कुछ हद तक हमारी कल्चरल बैकग्राउंड, हमारी सोशली, हमारी मूवीज, और इनफैक्ट एक रोड साइड रोमियो भी एक पिक्चर आई थी जिसमें सैफ अली खान वॉज स्टारिंग इन दैट, क्या इन सब चीजों को देख के एक लड़का या ग्रुप्स ऑफ बॉयज उत्तेजित होते हैं,
सोचने लग जाते हैं
कि हम भी ऐसा करें? डू यू थिंक दिस इज अ फैक्ट?
एग्जैक्टली ऐसा होता है मीडिया का, मूवीज का, म्यूजिक वीडियोस का, फॉर हॉलीवुड में जो म्यूजिक वीडियोस होते हैं उसका इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, लड़कियों पे भी होता है, लड़कों पे भी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे एक मूवी आई थी, मैं बता रहा हूँ स्टेप अप, इसकी तीन पार्ट आए, स्टेप अप 2, स्टेप अप 1, तो खैर उसमें ये दिखाया ना कि यूएसए स्ट्रीट्स में जो लड़के होते हैं वो दे आर यूज टू रैप, रैपिंग करना उनका बहुत पसंद होता है, तो वो यहाँ भी ये कल्चर जो है मैं अब देख रहा हूँ, अपने कॉलेज में देखता हूँ, यहाँ पे भी लड़के अब बहुत रैपिंग वैपिंग में आ गए हैं, तो ये चीज़ इन्फ्लुएंस उनसे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि लड़कियों को भी देखता हूँ, वो एक मूवी आई थी टॉर्क मूवी आई थी, तो उसमें एक लड़की होती है जो वो बाइक चलाती है, तो उसने जो अपना लुक ले रखा था उसमें बिल्कुल वो बिची लुक, सो कहते हैं जनरली लैंग्वेज में बिची लुक, तो वो लुक भी लड़कियाँ आजकल लेके चल रही हैं, तो वैसी लड़कियाँ जो है ना आई थिंक कि डिजर्व करती हैं कि उनको कमेंट करें और वो ऐसे करें।
अगेन द सेम थिंग ना,
मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि क्यों डिजर्व करती हैं,
आप बताओ।
अगर आपके आपके अच्छा आतिफ मुझे एक चीज बताओ कि अगर आप कमेंट करें, आपको लगता है वो लड़की गलत कर रही है, आपके कमेंट करने से कैसे वो चेंज हो सकती है?
एक बात मैं भी आतिफ से पूछना चाहूंगी कि अगर टॉम क्रूज जो है वो बहुत स्मार्ट लग रहा है और आपने टॉम क्रूज का हेयर स्टाइल रख लिया, तेरे नाम में सलमान का हेयर स्टाइल आप रखते हैं, तो लड़कियां नहीं रख सकती?
नहीं, एग्जैक्टली रख सकती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
मैं यही, उन्होंने वो स्टाइल की बात की ना,
ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो समाज में जो डिस्टिंक्ट बनने की जो एक चलन चला है अभी कि मैं सबसे अलग,
मैं डिफरेंट लगूं,
हां डिफरेंट लगूं, तो डिफरेंट आप लगिएगा तो उसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों होंगे ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं।
पर क्या आपने एक
पूछना चाहती हूं कि जहां पर हम बात,
आज तो बताओ वो पीएससिंग कराना, ठीक है, पीएससिंग यहां कराते हैं, यहां पता नहीं कहां-कहां पीएससिंग हो रही है आजकल, तो पीयरसिंग करा के घूमते हैं, तो वो कौन से कल्चर है, वो आप क्यों अडॉप्ट कर रहे हो उस चीज को?
पर क्या आपने बेड़ा ले रखा है कि हमारे कमेंट करने से, क्या आपके कमेंट करने से, क्या बॉयज के कमेंट करने से इन लड़कियों की सो कॉल्ड गलत हरकतें, क्या ये सुधार आ जाएगा?
ये जो कमेंट करने का इन्होंने अभी जो बताया है, जो कमेंट करने का वो जो भी है, बट जैसे एक बिची लुक बताया है, देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे एक आध लड़कियां होंगी जो ऐसा लुक लेके
डिस्टिंक्ट बनना चाहती
हैं, तो जो लड़के देखते हैं वो देखते हैं कि भाई जो हम टीवीज में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, वैसी ही एक लड़की ऐसे घूम रही है, तो ऑफकोर्स वो चाहेंगे कि एक बार कमेंट करें उस पर, क्योंकि हाँ ये लड़की उस टाइप की होगी, जो मेंटालिटी वाली बात हुई थी उसी टाइप की लड़की होगी, बोल के उसे कमेंट करते हैं, वो सोचते हैं हाँ ये पीछे मुड़ के देखेगी, उसी टाइप की मेंटालिटी काइंड ऑफ थिंग, तो ये रीजन यही होता है कि जो उनका लुक होता है, अटायर होता है, वो एकदम डिस्टिंक्ट बना के अपने आप को घूमती है, तो वो जो हम जैसे मतलब जितने भी लड़के होते हैं जो भी होते हैं वो ये सोचते हैं कि हाँ इसकी अटायर भी ऐसा है तो मेंटालिटी भी शायद वैसी ही होगी, तो लेट्स डू इट, टीजिंग करते हैं।
सो दैट इज इट डिपेंड्स, ये ऑल्सो डिपेंड करता है किरण कि हम कहाँ किस जगह के हैं, हो सकता है कि एक गाँव का लड़का जो शहर में आए या ग्रुप आए तो वो कमेंट करे, पर वो शहर वाले लड़के उसी सेम चीज पे शायद नहीं कमेंट करें, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ प्लेस वी आर। द काइंड ऑफ एडवांसमेंट्स वी आर इन. और शायद ये जो है ये एक बहुत डीप रूटेड
चीज है. और यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात मेरे को समझ में आ रही है वो यही, चाहे हमने लड़कियों से डिस्कशन किया चाहे लड़कों से, कल्चर जो है और जिस कल्चर में जो हमारा कल्टिवेशन जो हुआ है,
अपब्रिंगिंग
जो हुई है, ये वर्ड अपब्रिंगिंग, कल्टिवेशन, ये दो चीजें बहुत मैटर कर रही है. मेरे को यहाँ पे लगता है कि इन लोगों की माइंड जो सेटअप है.
और इन्होंने किरण, आई मस्ट से दैट बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी से ये पॉइंट्स हमें दिए हैं.
बेशक हम लोगों को एज अ गर्ल, एज अ फीमेल, हम लोगों को लगता है कि शायद थोड़े नेगेटिव हैं, बट ये सच है और यही बॉयज परसेप्शन है. और इसी को सभी लड़कियों को ध्यान में रखना है. शायद इसी वजह से हम ईव टीजिंग को अपने सोसाइटी से एटलीस्ट थोड़ा सा दूर रख पाएंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो एटमोसफियर है वो इसी काइंड का है.
और लड़कियों को शायद किरण उनको समझना चाहिए, उनको समझने की बहुत जरूरी है कि अगर हम इस माहौल में हैं तो हम सुधारेंगे तो सही, ठीक है, वो सुधारने वाला स्टेप शायद बाद में आता है, पहले हमें इस चीज से उभरना है.
बिल्कुल. और इसी के साथ हम ये डिस्कशन जो है यहाँ पर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारी डिस्कशन इस पे हुई है लड़कों के साथ और बहुत सारा परसेप्शन हमारे यहाँ पे निकल के आया है. लड़कियां जो है वो ये सोचती हैं कि लड़के इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. हालांकि यहाँ पर लड़कों ने भी यही वोट किया कि लड़के ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बट नॉट फुली रिस्पॉन्सिबल.
और ये एक निष्कर्ष निकला है कि लड़कियां भी टू अ लार्ज एक्सटेंट आर रिस्पॉन्सिबल इन सर्टन सिचुएशन. और किरण, इट हैज, इस सब डिस्कशन से मुझे तो एक यही समझ में आया है कि वी स्टिल नीड टू कीप दिस एफर्ट ऑन. और हमको बहुत मटेरियल मिला है कि हम और भी डिस्कस करें. और अगेन मेरी यही गुजारिश होगी हमारे लिसनर्स से, लड़कों से, लड़कियों से, कि अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो आप हमें कॉल करें और हमें बताएं कि आप किस सिचुएशन में हैं. मे बी वी कैन हेल्प यू और हम कोई सोल्यूशन निकाल सकें या फिर हम आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकें. और किरण विल गिव यू द नंबर.
हमारा नंबर है 8010781078. आप एक बार फिर से ध्यान से सुन ले, 8010781078 हमारा नंबर है. अगर आपके जहन में कोई भी सवाल उठता है या फिर आपको किसी भी बात से ऑब्जेक्शन है या फिर आप किसी बात को सपोर्ट करते हैं या फिर किसी तरह की काउंसलिंग चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं कॉल. मैं किरण थी आपके साथ और डिस्कशन हो रहा था ईव टीजिंग पे बॉयज के साथ. उनका परसेप्शन जानने की कोशिश थी. हालांकि फाइनली अब तक मैं एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं हूँ नीता मैम की, जहाँ पे लोगों ने, लड़कों ने ये कहा कि लड़कियां जो है उनकी ड्रेस कोड को जो इन्होंने डिफाइन किया है.
और लेकिन और कुछ वर्ड्स किरण को ये भी नहीं पसंद आए हैं जो थोड़ा बहुत मुझे भी नहीं पसंद आए हैं कि ये डिजर्व करती हैं. हाँ। पर उसके बारे में हम किरण
कभी और चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे, हाँ, लेकिन आज इस बात से मेरे को सेटिस्फेक्शन जरूर है कि हमें बहुत सारे और टॉपिक्स मिल गए हैं चर्चा करने के लिए और उनपे किसी ना किसी फैसले पर पहुंचने के लिए. आज कंक्लूजन चाहे बेशक कुछ ना निकला हो लेकिन एक फ्रूटफुल डिस्कशन रही है. हमारे पास डिस्कशन के टॉपिक्स बहुत निकल आए हैं और उन सब पर डिस्कशन आप लोगों के लिए हम जरूर लेकर आएंगे बहुत जल्द. दीदा मैम हमारे साथ हैं और आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू किरण एंड आई एम थैंक यू टू ऑल आवर फ्रेंड्स हियर.
और हमारे साथ स्टूडेंट थे आतिफ जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया से थे, समद और मनीष जो कि मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से थे. आप तीनों का भी हमारे स्टूडियो में आके और इतने सारे परसेप्शंस रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.
थैंक यू.
चलिए, बहुत सारा डिस्कशन अभी हो चुका है और भी बहुत सारे टॉपिक हैं और उन सबको हम लेके आएंगे जैसा कि मैंने वादा किया है. लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.